परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ये ब्रह्म विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये थिर नहीं है, ये सथाई नहीं है, ये असथाई है, ये नाशवान है। तो इसलिए हमने उस थिर को पकड़ना पड़ेगा, सतपुरुष को जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और वहां गए प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी 10:15 के श्लोक 1-4 तक प्रमाण है। अब इन ब्रह्म विष्णु महेश की साधना करने वालों का भी कितना ठोर ठिकाना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके भक्त भी ऐसे ही रुड़े रहेंगे संसार में, पार नहीं हो सकते। अपुण्यात्मा ये बार बार सदग्रह दिखाना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में एक जैसा ज्ञान फीड है। परमेश्वर कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या तो कुआ भांग पड़ी। यानी हम भी उसी तरह साफ हुए हैं, इतना ज्ञान सुनकर दिमाग में सेट हुई है बात में सचमुच हम सदग्रंथ के विरुद्ध साधना कर रही थी, बहुत समय लगा, कई बार तो सुनने को जी नहीं करा ये बातें, किले ब्रह्मा विष्णु में इससे भी ऊपर कोई भगवान बतावे हैं, अच्छे नालायक आदमी है। दुख भी होता था लेकिन जिज्ञासा थी कि देखा यू के बताओगा कहां लिख रखा है, वो देखा तो फिर वह साची पाई, और दो सत को नहीं माने फिर तो उसका इलाज के कुएं में पड़े फिरते न माने, जानबूझ साची कर झूठते ने अर्ता की संगते प्रभु स्वप्न में बिना दे, किसी नालायक तो बात भी नहीं करे, जो आंखें देख ले सदग्रंथों में लिखा फिर भी नहीं मानता वो तो पशु है, उसकी संग भी नहीं कर दे परमात्मा। अब देखो देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि थिर पकड़ थिर रहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये थिर नहीं है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, कहां से प्रकाशित और मुद्रित है, गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इसके 123 पृष्ठ पर है। ये देखिएगा तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 123। और यहां से देखते हैं विष्णु जी कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म और त्रोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव त्रोभाव यानी जन्म और मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये गीता में काम आओगे आपका कि प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्थिर नहीं है। अभी इनको पकड़ने से यानी इनकी आड़ लेने से तो हम स्थिर नहीं हो सकते। स्थिर माने अमर स्थिर। अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। नौवें श्लोक में कहा है इसी चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। यानी जन्म तो है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये सिद्ध ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है, ये अविनाशी नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि इसके संतान नहीं जानती, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जानती। दादाजी बताता है तो कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो शंकर का दादा, इनका दादा कौन है जो ब्रह्म का पिता है, वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, जो कबीर देव है। अब कबीर देव ने, उस पिता ने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देखति शोभा, और काल निरंजन तन मन लोभा। तो उस परमेश्वर ने इसकी उत्पत्ति बताई है, और फिर उससे ब्रह्म से फिर उत्पत्ति हुई है। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो उस दादा ने यानी सबके मालिक ने कबीर देव ने आकर इसकी उत्पत्ति भी बताई। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। यह आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण मा मन सुमरण, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरा केवल एक मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है उच्चारण करके सुमरण करने का, और कोई अक्षर नहीं, एक ओम अक्षर है यही बजा पर, और जो मेरी इससे साधना करता वो मुझे प्राप्त होता है। इससे सिद्ध है कि ये ब्रह्म भी नाशवान है, इसका जिसका ओम नाम है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको रह रह कर ये उदाहरण दिए जाते हैं। अब तीसरा जो परब्रह्म है ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष जिसको बोलते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो प्रभु बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर सर पुरुष है ये ब्रह्म, इसको सर्ब्रह्म भी बोलते हैं, सर्ब्रह्म, और एक अक्षर ब्रह्म। तो ये इन में और इनके प्राणी और इनके लोकों में और इनका शरीर, जितने भी प्राणी हैं सथूल श्री, सब नाशवान है, जीवात्मा अमर है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जो परमात्मा इति उद्धारते जिसको भगवान कहते हैं। यह लोक तरण आविश्य विवृति अवय ईश्वर है, वो अवय ईश्वर, वो अविनाशी भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कृति कंसेप्ट क्लियर किया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है और ये अविनाशी वृक्ष है, और इसके जो टहनी पत्तों सभी भागों को जो बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए बताया गया है कि दो संसार रूपी वृक्ष जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके सभी अंगों को विभिन्न विभिन्न बता देगा, भिन्न भिन्न सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो इस तत्व ज्ञान से परिचित है। तो परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के कबीर जी ने तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उस समय अपनी सचिदानंद घन की वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो पुण्यात्माओं, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो वास्तव में अविनाशी है। तो इसमें बताया गया, परमेश्वर ने आगे बताया कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, तो 15वें अध्याय के 1-4 श्लोक का तात्पर्य है, तो उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु में प्राणी नहीं आते, फिर वो कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसके लिए बताया है कि, और वो परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी सबका सृजनहार है वो। उसके लिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसके उसका उसका मंत्र बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध स्मृतः। उस सतीदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने अध्याय नंबर 7 के 29-29 श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर प्राणी यहां से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीनों भगवानों का कति कंसेप्ट क्लियर है, उसको अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर अक्षर ब्रह्म कहो, या अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो। और 17वें श्लोक में जो वो परमात्मा बताया है उत्तम पुरुष है, तो अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म, वो मूल मालिक है जिससे सबका संसार रूपी वृक्ष की जड़ है वो, और जड़ से ही सबको खुराक मिलती है, वो सबका पालन पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष कबीर जी ही करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है तो उसका मंत्र है ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये इस अक्षर ब्रह्म का, ओम है यो क्षर ब्रह्म का, ब्रह्म कहो तो अक्षर ब्रह्म को, सर क्षर क्षर हम सिंपल संत भाषा में क्षर बोल देते हैं डिफाइन करने के लिए, एक अक्षर अक्षर यानी सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, सर्वपुरुष या अक्षर पुरुष एक ही बात है, यानी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। और फिर तीसरा है वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो है वास्तव में अवय ईश्वर, वो अविनाशी प्रभु है। उसका मंत्र बताया है ओम तत् सत। ओम तो सीधा ही इस ब्रह्म का है ज्योति निरंजन का, और तत् ये इस क्षर पुरुष का अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का, और तत् वो सांकेतिक है, ये तत् नहीं, तत् ओम तत् सत, ओम तत् सत ये कोई मंत्र नहीं, हरि ओम तत् सत भी कई देते हैं वो ठीक नहीं, ये गुप्त मंत्र और है, ये कोड वर्ड है। अगर ऐसा होता तो फिर वो ओम, अगर ये ओम तत् सत ही मंत्र होता तो ये कहने की क्या जरूरत थी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ये आपका क्लियर था फिर तो, ये नहीं, ये कोड वर्ड है, ये तत्वदर्शी संत ही बताएगा इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने। अब इस दास के पास वो मंत्र है और किसी के पास नहीं, और कोई देगा तो उसका लाभ नहीं, वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है, तो वहां पकड़े जाओगे, दोनों सजा होगी दोनों की। अब क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तू फेर तुरासी जाई, जा सतगुर की मैं बलिहारी, जजामण मरण मिटाई। उस संत के उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, जो जन्म और मृत्यु मिटा दे, सदा के लिए समाप्त करे। तो पुण्यात्माओं, आप एक इन परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर सोचे बैठ कर अकेला कि मृत्यु तो होगी, मृत्यु होगी, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, और ये जिसको तू अपना मान रहे तेरा है कोनी, कति नहीं है। परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जा, और बीच में ख्वा भी ख्याल है, तेन यो मन माया ब्रमावे, कति नी वस्त्र आया था, न्यो का न्यो जागा। बीच में जो तू कुमत कर रहा है, इसको मन और इस माया ने, त्रिगुणमय माया ने तेरे को उलझा रखे। मन यू काल है, और त्रिगुणमयी माया यू रजगुण ब्रह्म सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी द्वारा फैला गया जाल है, सती थी उत्पत्ति और आपस में मोह ममता और ये मृत्यु, यो बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये स्वप्न जैसा खेल है जो जिसमें तुम खुश होए बैठे हो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, जब शरीर तेरा नहीं तो कोठियां पर कैसे इतना सांस लगा ली, या माया कितो होगी, बैंक बैलेंस तेरा कुकर गेल साल लगाते रहे, तो ऐसे ये याद दिलाते हैं। तो फिर हमने क्यों ना हम आस्था सिद्धि कर ले भगवान, फिर यहां ना आवे, आगे तो फिर यह योगाटा फिर शुरू, ये रेट का तेली वाला कोल्लू फिर शुरू, बच्चे हुए जन्म हो गया है, फिर किस कर्मानुसार किसी रोजगार मिला किसी ना मिला, कोई मजदूर कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, संतान होगी वही ना हुई वही, जब फिर उनकी चिंता पालो पोसो पढ़ाओ, कोई मर गया कोई बच गया, किसी का कुछ हो गया किसी का कुछ हो गया, यानी 24 घंटे टेंशन, ये दुख फिर मृत्यु फिर बुढ़ापा बिरान माटी। तो इससे पीछा छुटेगा ईब, अब ये वो वक्त है ये बिचली पीढ़ी वाला। पुण्यात्मा प्रथम तो यू ज्ञान किसी ने सुन की फुर्सत ना है, और फिर कोई सुनना चाहती हूँ ज्ञान ना, नेरे एंड वेंड बोलनी है, उवा बाई बोलनी है, संतर गुरु मार मंडलेश्वर पता नहीं कितने दुनिया उड़ जाए बैठे हैं, तो आपके ऊपर यह मेहर हुई परमात्मा की, अभी यू कच्चा काम नहीं है, और ये बातें कह सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा खुद कहते हैं ये हमने कह दी तुमने सुन ली तुमने आगे बता दी, ये कर पाड़न की है, यू काम करण का है, कहते किसी इसकी एट एनी कॉस्ट। और यहां तक बताया जब सिर के सटे हरी मिले तो भी सस्ता जान, अगर ये सिर दे तो मालिक मिल जाए तो भी बिल्कुल चीफेस्ट है, सबसे सस्ता ही, तो मरेगा सिर तो जाना ही तेरा, कितने बीमारी में हो जाएगा, कैंसर में तड़प कर मरेगा, एक्सीडेंट में मर जा और कोई कारण हो जा, और तो इसके सौदे में मालिक मिल जावा तो इससे सस्ता कुछ नहीं। अब सिर का साटा क्या होता है, सिर कैसे देना है, कैसे सौदा करना है शीश का, एक शिष्य एक गुरु के तीन चार चेले थे, उनको वो ज्ञान देता था, उनको ज्ञान दिया कि भाई गुरु जी के वचन का पालन करना चाहिए तब जीव की भक्ति सफल होगी, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद चुरासी के, कट गे फंद चुरासी के, रकट गे फंद चुरासी के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे कट गे फंद चुरासी के। अब ये नियम सही है, परमात्मा भी कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु की आड़ लेवे। तो ऐसे वो शिक्षा दे रहा था कि भाई गुरु जी के वचन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो कह दिया फाइनल हो, और वही भगत सफल होया करे। जैसे गोरखनाथ जी ने गोपीचंद भरतरी दोनों राजा थे, राज त्याग कहिए फिर गोरखनाथ जी के शिष्य हो गए। तो गोरख उनसे कहने लगे भगवान हमारा उद्धार क्यों करोगा, अगर उद्धार होगा भाई ठीक है, नाम दे दिया, नाम जपो। और अलवर, ये राजस्थान में अलवर शहर है एक, वहां एक राजा का नवाब का किला बने था, और कहा कि उस अलवर में नवाब का किला बना है, वहां जाओ दोनों जने और वहां जाकर तुम मजदूरी करो और वहां से पैसा मत लेना, अपने भोजन के लिए ओवर टाइम की तौर करियो जाओ। अब बताओ ये कोई भक्ति, भक्ति का कोई इसमें कोई अंश भी ना दिखता भक्ति का, लेकिन गुरुजी के वचन की कीमत होती है। वो किस दृष्टिकोण से उनको कह रहा है, क्योंकि वो किस सत्र के गुरु थे, फिर भी उन शिष्यों ने उस गुरु की आज्ञा का पालन किया। अब तो उनको जितना भी उस रात मिलने थी और राहत गोपी चंद भर्तरी को मिली। तो कहने का भाव इस प्रकार, वो उन्होंने गुरु का आज्ञा का पालन किया। 12 वर्ष तक अलवर के किले में पत्थर डोए, पैसा नहीं लिया, कोई भी चीज मेहनताना नहीं लिया, अपने पेट के लिए एक कुम्हार के घर चले जाते। वो कुम्हार एकला दुखी हुआ करता, उसे कहने लगे पिताजी हम आपकी मदद कर देंगे। वो बोला भाई मदद कर दो चाहे ना कर दो, पैसा देने दे मेरे पास कोई ना। बोले जी ना पैसा नहीं ले। तो क्या हमने, वो बोला जी एक आधी रोटी दो तो दे दियो ना, आपकी मदद वैसे भी कर, वैसे मदद वो नहीं करवा सकता, पता था उनको। तो वो क्या कहने लगे अपनी पत्नी से कि दो आदमी और मेरे साथ रहे हैं, रोटी ज्यादा दे दिया करे। मैंने बोली और कमाल कर रहा है तू क्या कर सारा दिन, और खागड़ पाड़ लिए तो ना। वो 8 रोटी दिया करती था, 6 देने लगी उल्टी। तो वो तीनों जने उन नमत एक दो दो खा के अपना टाइम पास कर ले, इस तरह चलता रहा। और फिर उन्हीं में इतनी सिद्धि शक्ति आ गई कि अंत में जब वो 12 वर्ष तक वहां रहे, ऐसा चलता रहा। तो चलते समय उन्होंने कहा कि पिता का हेत माता का कुहेत और आद्य कंचन आधारित, यानी जो घड़े वो बनाया करता था वो आद्य तो सोने के हो गए और बाकी बिना पके रह गए कति कच्चे। आवाज जब खोला वो चले गए। बाद में जब उनके जाने के बाद उस कुम्हार ने कुमारी को अपनी पत्नी को दिखाया कि देख ये चलते समय ये शब्द बोल के गए थे वह। फिर वह भी रोई बेचारी, गाय मन गलती कर दी, ये तो महात्मा थे भगत थे कि तय इनकी आत्मा दुखाई, तो ये भी के बने वो तो समय गया। तो कहने का भाव ये है कि गुरु जी के वचन पर रुकने से जिस सतर की उनकी भक्ति थी वो ये सिद्धि सिद्धि ही बनाते हैं, ये सिद्धियां ही आ जाती हैं, इससे वो महात्मा और संत कहला जाते हैं। उस सत्र की जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई थी उसको भी गोपी चंद और भर्तरी ने गुरु जी के आज्ञा पालन करके सफल किया। कहने का भाव ये। और अब हम परमात्मा पूर्ण की भक्ति करेंगे तो भी गुरु जी का वही नियम है, गुरु जी की आज्ञा का पालन ही करना होगा। तो वो शिष्य अपने चेलों से ही बताया करता कि भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए तभी सफलता मिलती है। तो ऐसे पहले तो यह शिक्षा दी, फिर कहने लगा भाई तुम सारे पांचों के पांचों चार पांच जितने हो मेरे सिर में जूते मारो पांच पांच। अब फिर गुरु जी को भगवान के समान मानना चाहिए, ये भी शिक्षा साथ होती है। अब धर्म संकट में फंस गए भाई, गुरु जी का जूते मार दिए तो नाश पिट गया बात का, बात बिगड़ गया थे ना, कति कितना जोगे भी ना रहेंगे हम तन, या भक्ति का आग लग जाएगी मारी कह भाई। गुरु जी का जूते कैसे मारे, एकदम सतब्द हो गए, नीची गर्दन कर ली। और गुरु जी ने कहा भाई अरे ये क्या शिक्षा दी थी मैंने तेरे तुम्हारे को, भाई तुम तो भगत अच्छे नहीं लगते मुझे। एक एक व्यक्ति एक भगत खड़ा हुआ और अपना जूता निकाल के गुरुजी के चरणा में बैठ के निकट और अपने सिर में पांच मारे। गुरुजी बोले भाई डंडी मत मारे, मैंने मेरे सिर में कहा तेरे में नहीं। तो वो कहने लगा ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, ये दास का सिर भी तो आपका ही तो है। सीने से लगा लिया उस बच्चे को, बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी होना चाहिए भक्ति में, निराकति लकीर के फकीर नहीं होने चाहिए, यानी उसको सोच ध्यान दे गहराई तक जावे। तो यहां कहते हैं ऐसे सिर सौंप्या गुरुदेव को, सिर सौंप्या कि ये मेरा नहीं दाता तेरा है, कितना प्रयोग कर इसको, सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब ये ऐसे शीश देना है। तो यहां बताया कि अगर सिर के सट्टे हरी मिले, अब गुरुजी को शीश दे दिया तो फिर ये आपका तो नहीं रहा, चिंता मिटी। अब चिंता तो भगवान ना होगी इसकी, कैसे रखना है, कब तक इसको सुरक्षित रखना है, कोई आपत्ति आवेगी तो इसको फिर किस प्रकार टालना है। आप जी ने तो समर्पण कर दिया, पति भर्ता की तरह हमने इस परमात्मा एक ही भक्त के पर आसक्त होना है, अन्य पर नहीं होना है। यानी जैसे फिर जब हम पति भर्ता पद पर आ जाएंगे, यानी एक का भगवान नथिंग एल्स, सपने में भी किसी देवी देवता से हमने अपनी मनोकामना पूर्ण की इच्छा ना आवे, तब हम पति भर्ता पद पाएंगे। और जब हम पति भर्ता पद पा जाएंगे तब परमात्मा ने भावांगे, यानी पति भर्ता स्त्री तभी अच्छी लगे अपने पति ने, जब उसको ये पक्का विश्वास है कि ये किसी अन्य पर उसको नहीं चाहती, तो फिर उसमें उसकी पूरी आस्था होती है और उसके सब दुख का वो पति ख्यास रखे। तो परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कि जब वो ऐसी आत्मा जो एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पर समर्पित होगी पतिव्रता की तरह, तो वो अपने जीवन रूपी सफर में जब कदम रखेगी आगे, उस पे पाप रूपी कर्म के कांटे अगर उसके सफर में है, तो समर्थ झाड़ू देत है वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसके भक्ति मार्ग, उस जीवन के सफर में आने वाले संकटों को हटाता चलेगा, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जा। तो वो जब हम सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश और नितानंद इस शीश पे आप बसे जगदीश, तो ऐसे फिर परमात्मा ने चिंता हमारी सारी हो जाएगी। तो हमने ये ध्यान लगा का जहां आशा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरी असोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट की भावना में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। जो भी जिस भाव में भावित रहता है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, तो ब्रह्मा या विष्णु या शिव जिसको इष्ट मानकर पूज रहे उसी के लोक में चले जाएंगे, वहां अपने कुछ पुण्य समाप्त होते ही तुरंत फिर 84 लाख योगियों में आ जाएंगे। जो ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, कि तू मेरी भक्ति कर और निश्चय ही और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10, 3 श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और भी बहुत से स्थानों पर जिसके विषय में जानकारी दी है, उस तत्ब्रह्म की साधना करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो उसकी पूजा करता है, उसकी पूजा उसके मंत्र का संकेत दिया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका मंत्र है ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के ये दास बताएगा। ये पूरा मंत्र 3 मंत्र का एक ही बन जाता है। पुणात्माओं ये सारा कुछ कथा सुनाकर आपके हृदय में यो ज्ञान फीड करना है, मेरा उद्देश्य ये है। इधर उधर के जो सारे कुछ लगाकर आपके हृदय में ये परमात्मा रह रहकर ऐसा ज्ञान दचा देना है कि आप परमित ना हो जाओ, उंगलियों पाप का यो ज्ञान समा जावे बालक तले के बुढ़े ताई। और ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकते हैं, वो कम से कम बुद्धि तो इतनी रखते हैं, रह रह कर यो ज्ञान सुनेंगे। और जो वैसे तो आज कोई ऐसी स्थित रहा नहीं, बुढ़े तो ही पढ़ गए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जाता, नजर कमजोर होगी तो अपने बच्चों पर पढ़वा सके, देखिए भाई 17वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ के सुनाइए मैंने, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसे ही भी ये काम बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि वो उस परमात्मा की भक्ति करता है, यानी उसमें भावित हो जाता है, तो उसके पास भक्ति के यज्ञ, भक्ति के बल से, योग के बल से, भक्ति की कमाई से वहां सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। तो इस प्रकार हम क्यों ना यहां से जाना तो है ही, और ये हृदय में गांठ मार ले या तो लगी लगाई है, समझदार आदमी तो जल्दी समझ जाता है ये तेरा नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तुझे यहां पर काल ने भूल भुलैया में रखा हुआ है, भ्रमित कर रखा, बका रखा। और इस भूल भुलैया को परमात्मा ना के हमें बता भी रखा, तो फिर हम क्यों ना असर करें अपने मालिक की बात पर। अब जैसे नितानंद जी ने कहा कि शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूरण भागरे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, सैन सैन माने संकेत, जैसे कोई आपत्ति का समय हो और कई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हो, कोई संकेत करना हो तो अपने व्यक्ति को कोई संकेत से करते हैं, यूं करते हैं, यानी ये सैन होती है। वहां बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाना चाहिए कोई क्या बताना चाहता है, खिसक ले जाने थे, वो सैन है, वो संकेत है। कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे, बुद्धिमान को तो या सैन बतेरी, ये संकेत बतेरा कि यह काल का लोक है, ये रण का स्थान नहीं है, और जहां आशा ता बासा हुई, अगर तेरी आस्था यहीं रहेगी तो यहीं फिर आ जा, कि तक कुत्ते के दे की जोनी पाक है। और सतगुरु का मिलना पूरे भाग से ही होता है, अच्छे पुण्य कर्मी प्राणियों को ही सतगुरु मिलते हैं। अब नितानंद जी वैसे तो विष्णु जी के उपासक थे, अब भोली आत्मा उसी को पूर्ण गुरु मान रहे थे और उसी को पूर्ण इष्ट मानकर उसी की साधना कर रहे थे, महिमा पूर्ण परमात्मा की गा रहे थे और नियम बता रहे थे वही, क्योंकि ये खेल का मैदान है, जिला स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही है, और स्टेट स्तर पर खेलेंगे तो भी वही है, और नेशनल स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही रहेंगे, इंटरनेशनल खेल खेलेगा तो भी मर्यादा वही होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, तो हमने कहां जाना है ये ध्यान रखना है, हमने सतलोक जाना है, उसके लिए क्या बता रहे हैं, नर नारायण देहे पाके तू फेर चुरासी जाई, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। तो जामन मरण नहीं मिटेगा भाई, पहले तो भक्ति करो, भक्ति करके फिर आस्था यहां से हटाओ, आस्था कैसे हटेगी, यहां के दुख याद करके, और यू रेट के कुएं वाला जो कोल ये चक्कर है इसको ध्यान में धर के, क्या बताते हैं, कुल परिवार तेरा सकल मसीह, जब ये मृत्यु हो जाएगी, मरो तो सारे गे ना, जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु होगी, और हम भक्ति करते हमारी भी मृत्यु होगी, लेकिन हमारी और अन्य की मृत्यु में बहुत अंतर होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंदे जादीर, जो भक्त हैं वो तो परमात्मा के जहाज में बैठ कर जाएंगे, ठाट से ची ची कर दे, और भाई जो अपराधी हैं, अपराधी कौन है, जो भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ने तुम्हें निमित्त में दिया है धन और उसमें से जो दान नहीं करता यज्ञ नहीं करता वो चोर है मालिक का। परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो रहे उर्दमुख झूल। जिन हर की चोरी करी, जो चोर है भगवान की भक्ति नहीं की, दान धर्म किया नहीं, तो वो राम नाम राम के गुण भूल गए, भगवान के गुणों से अपरिचित रहे, तो उनको परमात्मा ने बागुल पक्षी बना दिया। एक बागुल पक्षी होता है, वो उसका दो पैर होते हैं, पैर दो ही होते हैं, और ऊपर को वो कैसे बैठता है वृक्ष पे, नीचे नमू कर रखता है, ऊपर लटका रहता है पैरों से नीचे नमू करके, और मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है, उसको ऐसी सजा दे रखी। कहते वो ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त होगा। तो जो अपराधी हैं उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, जाएंगे सभी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़े जात एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया, आप मरोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, मौत होगी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और जो भक्ति नहीं करते वो एकाध अपुनकर्मी प्राणी है, हार्ट अटैक हो गया जल्दी ही चला गया, तो फिर दोबारा गधे जो नहीं पाओगा वो गया कित, यानी वो तो फॉर एग्जाम्पल एक आधा होता, बाकियों की मृत्यु या तो बीमारी था या वैसे की तो जुबान बंद होगी, टट्टी पेशाब माय निकल गई, कोई कोई दिन खाए पिए हो जाएंगे, घर के भी दुआ करेंगे भगवान मर जा तो बढ़िया, पंडा छोटा दुखी हो जाए। तो क्या बताते हैं, जब यह मृत्यु होगी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब की एक सलाह बन जाएगी, उठाओ कुल परिवार के लोग आके आसपास के जो के उठाओ उठाओ इसे जल्दी करो भाई, बांस हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जल्दी करो। तो कहते हैं दो घंटे भीतर तने शमशान घाट पर जाद रहेंगे, और अग्नि लगा जिया दिया जद लंबा, फूके दिए उस ठाही, कर दिया काम वहां जला दिए। फिर क्या बताते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई, ये पुराण बांध के पंडित आए पाछे गरुड़ पढ़ाई, गरुड़ पुराण को पढ़ाते हैं, सात दिन का पाठ करते हैं मृत्यु के बाद ये नकली गुरुजी। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, उसमें मृत्यु के उपरांत जीव के ऊपर क्या क्या आपत्तियां आती हैं, और उनका कारण बताया है कि इसने ऐसा कर्म किया जिसने उसके ऐसे अंग कटते हैं, वहां आंखें फोड़ दी जाती हैं, ऐसे यहां भी जो दोबारा कभी जन्म होगा तो इसे कर्म किया उसका बेटा मरता है, उसकी ऐसी बेटी भी दुआ होती है, उसके ये कष्ट होते हैं। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि वो मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया अपने जिसे कर्म किए थे, वह गठड़ी बांध गए, वह खुलवाली जाकर धर्मराज ने खोल बेटा बेटी क्या लाई कुमा के। अब उसके बाद वो गुरुजी वहां गुरुड़ का पाठ करने लग रहा है, अरे भले आदमी गुरुड़ का पाठ तो पहले पढ़ाना चाहिए था उसको, मरण से पहले मृत्यु से पूर्व, ताकि वो डरता उसको भय बनता बुंडे कर्म बुरे कर्म ना करता और अच्छी भक्ति करके अपना पीछा छुटवा जाता अच्छे कर्म करता। अब वो तो गदा बनने की तैयारी कर रहे और वहां गरुड़ पुराण का पाठ करने लग रहे, अरे वाह भाई वाह, या तो वह बात होगी वह कीला गिरी खुरा में ट्रीटमेंट घुटने का, पशु के बैल के कील तला गिरी खुरा नीचे खुरा में और गोड्डे पर पट्टी बांधे तेरा कैसे हुई। तो ऐसी इनकी ये भक्ति मार्ग था। अब क्या बताते हैं, प्राण बांध फिर पंडित आए पीछे गुरुड़ पढ़ाई, नरसेती तू पशु नरसेती फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहां मन बोरे कि तकुरड़ी चुगने जाई। अब क्या बताते हैं कि वहां तो वो गुरुड़ जी भी का पाठ हो रहा है, और वो क्या होता है, नरसेती तू फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये सुंदर आहार आज भूख लगे जब दूध पी लें, चाह बनवा लें, पकौड़े खावे, समोसे लड्डू जलेबी रोटी अच्छी सब्जी दाल, और ब्याह शादी में भाई लड्डू जलेबी। तो अब तो आप मनुष्य शरीर में हैं और जो चाहे आहार आप प्राप्त कर सकते हो, और फिर एक भक्ति ना करने से क्या होगा कि बैल और गधा बनेगा। ये 56 भोग कहा मन बौरे कि तक कुरडी चरने जाई पुनात्मा कलदा पाठ जा भांग उतर जाता आपकी। ये भांग का ये त्रिगुणमयी माया का जो नशा आपके है ये धीरे धीरे उतर तकगा, क्योंकि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, उतर जाएगा, कति उतरेगा, यानी बहुत काम आओगी आपके आप साधना। तो इन बातों ने याद आओगे ना, कलेजा हिल जा आदमी का और भक्ति करे डट के, बुरे काम मत बच्चे, कति बुराई नहीं करे, बुखार ले टाइम वो अच्छा है। नरसेती फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बौरे कि कुरडी तुरने जाई। प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाई। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान मैन में मिले कबीर गुसाई। अब क्या बताते हैं कि जब ये प्राणी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट गया, तो इसको क्या करते हैं, फूल उठाओ, फूल यानी इसके अस्थियां उठाओ और कहां ले जाओ, गंगा में ले जाओ। गंगा में किस लिए, कि इसकी गति हो जाएगी। गुरुजी बताते हैं कि इसकी गति हो जाएगी तुम्हारे माता पिता की, और इसको गंगा में अस्थियां बहा का हुआ तुम्हारे विशेष गुरु के माध्यम से। तो यहां से जाते हैं अस्थि लेकर के गंगा के घाट पर, वहां गुरुजी और अक्षेत्र वाइज डारे नारे वहां गुरुजी हैं जो गति करने वाले हैं, मोक्ष करने वाले। तो वो फिर वहां अस्थि डालते हैं, उनके फिर पैसे पूजा मांगते हैं। अब होगी गति, पिताजी के फूल डाल दी, अस्थि डाल दी, गंगा में गति कर दी, फिर कहेंगे भी इनके जो है ना तेरमी करो, किस लिए कि उसकी गति होगी। फिर कहेंगे इसका महीना, पहले महीना और फिर 6 महीने और फिर 6 माही करती, यानी उसमें विशेष प्रोग्राम होता 6 माही में, और फिर वर्षों दी वर्षी उसमें फिर विशेष। तो सारा क्रिया क्या थी, पिता की या माता की गति करावांगे, वो गुरुजी कराया करते। फिर कहते हैं भी इनके काटो श्राद्ध, ये पितर बन गए, और फिर जो कि इनके पिंड भरवा दो, किस लिए कि अभूत जूनी छूट जाएगी, इनकी गति हो जाएगी। फिर श्राद्ध निकालते हैं, तो श्राद्धों के दिनों में कहते हैं सबसे पहले जब वो श्राद्ध निकाल लगा, गुरुजी कहेगा कि ऊपर रखो कुछ भोजन, कौवे खा लेंगे। कौवे किस लिए खाएंगे कि हो सकता तुम्हारे माता पिता कौवा बन गए हो, अरे तेरा गजब हुई हो। अब परमात्मा कहे हैं कहां से गति कराने लग गए और कौवा बना के छोड़ दिया, वो पिताजी का कौवा बनवा दिया। परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, भाई जीवित बाप गे लठम लठा मुए गंग पोचैया। जीवित बाप की तो कदे सेवा नहीं करी, और उस वो गुरुजी आया करते एक महीने उसकी पूजा करें संध्या महीने, और फिर 13 दिन उसकी बटेवी की तरह सेवा, जो मांगे भाई ले दादा, जो मांगे लिया दादा, कदे पिताजी की गति में, यानी वो कदे भूत बटके से ना जातम ना फिर समारे, वह गति न्यू थी, और कोई पिताजी से कोई लेन देन नहीं रहा, फिर मरे पाचा मर गया मर गया, और डरते न्यू करा करते कदे भूत बनकर फिर आसिद है, जानते हैं कील गाड्या करते जलिया में, कदे फिर उल्टा ना आ जा। अरे ई वो बाप दुश्मन हो गया, ई उसके सारे पर बंद कर दिए, वापस नहीं आ जा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं अरे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, जीवित बाप गए तो लठम लठा, और मरे पाछे गंग पोतिया गंगा ले गए। और जब आवे आसुज का महीना वो कौवा बाप बनैया, रे बोली सी दुनिया, जब आसुज का महीना आया वो कौवा बाप बना लिया, कि हो सकता है ये तुम्हारे पिताजी हो, और ये देख खा गया ना कौवा, तेरे पिता को भोग लग गया। ये ऐसे थे हमारे गुरुजी, जिन्होंने कति रांद काट रखी, सारे भक्ति मार्ग का बठा बठा रखे। तो यहां क्या बताते हैं, परेतशिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बोर सराद खान को आए फिर काग वहे कलीमा ही। पहले पिंड भराए फिर सराद निकाले, और कौवा बनकर फिर वो साध खान आएगी, सराद खान आएगी। अब क्या निष्कर्ष देते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ओह, जय सतगुरु की संगत करते यानी तत्वदर्शी संत के शरण में रहते तो सकल कर्म कट जाई, ना भूत बनना, ना अस्थि ठाणी, ना श्राद्ध निकालने, ना कि तो महीने पर सोदी छह माही करनी। क्यों, तो चला गया प्राणी निज स्थान, चला गया माटी माटी में, रला जी बता फिर रह गया के रोला, फिर क्या बीच में के रह गया, वो नो करवा और नो करवा, वो फलाना करवा, वो फूक का अपने हथा रे, और वो जीव चला गया जहां उसने जाना है। अब हमारा भक्त परमात्मा के भक्त सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाही। उस मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कहते अमरपुरी पर आसन होते, उस सनातन परम धाम पर पहुंच जाते तुम, जो गीता जी दहन 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा, 62 में, कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम उस अमरपुरी में चला जाएगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते ही जहां धूप ना छाई। सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई। अब गरीब दास साहब जी कहते हैं मुझे तो मेरा मालिक गुरुदेव कबीर जी मिल गए, इसलिए हम तो भाई मस्त हैं, हमने तो अपना ठिकाना ढूंढ लिया, सतलोक में जावांगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने यही बताया है कि मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर रत्नागर। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण राशा। पुण्यात्मा हम आज के नहीं है, असंख्यों जन्मों से हम ऐसे ही कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते आ रहे हैं। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी, पहले अच्छी आत्माएं भी रही हो, फिर नरक में भी चले गए हो, देवता भी बने हो, राजा भी बने हो, कई कई बार बने हो। एक बार मार्कंडे ऋषि एक कीड़नाल को देख रहा था, इंद्र स्वर्ग का राजा आ गया पीछे थे, और कहने लगा हे स्वामी, ए महात्मा जी, आप इन चींटियों में क्या खोज रहे हो, क्या देख रहे हो। उसने देखा इंद्र खड़ा है, उसने कहा कि देवराज, इनमें मैं ये देख रहा हूं कि कौन सी चींटी कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि हमारे सारे पिछले संस्कार भी हमारे प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड होते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोड वर्डों में कितनी वो फीड कर देते हैं, फिल्म फैलम फिर सारी कहानी। तो इंद्र का झटका सा लग गया कि हे परवरदिगार, ये चीटी भी कभी इंद्र रही है? कहा बेटा कई कई बार। क्या देखा? कि इनमें एक चिट्टी ऐसी है जो एक बार इंद्र बनी है, बाकी तो कई कई बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है। ओ तुरा, अब आज राजा है, इंद्र है, कल को गदा बनेगा, वो तेरा गजब है, क्या लगा इसे राज का, स्वर्ग का राजा, और गधे की योनि से प्रारंभ होगा उसका 84 लाख योनियों का चक्कर। पुणात्माओं, इस दास को जब ज्ञान हुआ, धरती पर किता की तपा टक्के थे उस दिन, वे भगवान रात को नींद नहीं आई, सारी रात बैठ के काटी है परमात्मा, दिकड़े डले डोवा थे, के साधना कर रहे थे, कि तक कह कोई सिर था ना पैर था, कोई ठिकाना नहीं था, और क्यों कर दया करी मेरे माले। फिर ईसा हो गए, बताऊं किसने को सुनने तैयार नहीं, सारे उल्टे बोले, अब यह भी समस्या परमात्मा आप ही हल करोगे, अब यह धीरे धीरे होगी, दया होगी दाता की, मेरे जैसे दुखी बतेरे पागे जिनको भगवान की चाह थी। अब क्या बताते हैं कि सतयुग में राजा अम्बरीश थे, बहुत प्यारी आत्मा, बड़े सैन स्वभाव, शील स्वभाव के, परमात्मा से डरने वाले, दान धर्म करने वाले, और दुर्वासा जैसे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जो ऋषि थे, घर त्याग कर चले गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और वो अम्बरीश जी बाल बच्चेदार थे, राजा थे, तो उस अम्बरीश जी की भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, की थी उन्होंने, ऐसे भक्ति कर रखी थी, इतनी भक्ति की शक्ति थी कि दुर्वासा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया सिद्धि से, वह सिद्धि उल्टी दुर्वासा को ही मारने के लिए दौड़ी, दुर्वासा जी ने आखिर में उसके चरण पकड़े अम्बरीश राजा के, जब उसकी जान बची। तो ऐसे महान आत्मा सतयुग में राजा और फिर भक्ति की, वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक हुए, और फिर राजा के पास कितने नौकर होते हैं अंडरस्टूड है, और फिर वही प्यारी आत्मा नानक जी हुए। बताओ आप, अब पुण्य खत्म हो गए तो स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहां, एक रोजी रोटी के लिए, और पहले स्वयं राजा थे, नौकर उसके हजारों की संख्या में सर्वेंट होते थे। तो यहां, और अगर यदि अब परमात्मा उन्हें नहीं संभालते जाकर के बेई नदी पर, तो ये प्यारी आत्मा अपने पुण्य क्षीण करके 84 लाख योनियों में चली जाती। तो ये पुण्यात्माएं जो पिछले जन्मों में कभी प्रभु की चरणों में रहे हो, आप भी उन्हीं में से हो जिनको आपको परमात्मा ने संभाल लिया। कहते हैं जो दिन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरती आकाश है। उसी सिद्धांत से परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। देखो इस दास, आप देखते हो मेरा रूटीन, इस दास का भी ये 3 दिन सुबह उठ लेना, सारा दिन आपसे मिलना बोलना, कोई दुख सुख आपका पूछना, जिसका दास को ज्ञान है आधे से बताना, फिर सत्संग करना 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, और फिर ये ज्ञान समझाना। तो ये किस लिए हो रहा है, मुझे क्या स्वार्थ है? दास का कोई लालच नहीं था कि मैं कोई रोजी रोटी के लिए ही इसे गड़पड़वाऊ हूं, नहीं, परमात्मा का आदेश है। जिस कार्य को परमात्मा सतलोक से चलकर करने आए यहां पर, दुनिया के डले खाए बूंडे को आए, बदनाम हुए, मारना चाहा उनको, लेकिन उनको कौन मार सकता था, फिर भी वो इतने कष्ट हमारे लिए उठाए, वो ड्यूटी व मजदूरी इस दास को दे दी, तो मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं, शुक्र मनाऊ परमात्मा का कि ये शीश आपके लेखे लगे, और ये आजीवन ये हिम्मत दो परमात्मा तेरे बच्चों को ये ज्ञान समझा सकू। तो ये सारा ज्ञान आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप बहुत पुण्यात्माओं में से हो। अब क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा, कुकर सुकर खर व्यावरे, कौआ हंस बुगारे, और कोटि जन्म तू राजा की नामेटी नमन की आशा, भिक्षकों के दर दर गुमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा, ये मार्ग नहीं मिला इसलिए भ्रम रहा था तू अभी तक। फिर क्या बताते हैं, इंद्र की पदवी, जो स्वर्ग का राजा होता है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुर को जाके, विष्णु लोक को जाके, फिर भी तू वापस जन्म मृत्यु में आया, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश बद मैल मठबोरे बहुर न दे धरे रे, असंख्य जन्म तो न मरत्या होगी, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरना है कि जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो, सोचते हो, तो कोई न कोई बाधा आपके सामने अवश्य खड़ी होती है। कुछ एक पुण्यात्मा होते हैं जिनके पास नहीं होती, लेकिन बहुत के होती है। तो उस समय ये सोच ले, भी मान लीजिए आज मैं सत्संग में जाने से रुक जाऊं, क्योंकि मेरा यू काम खराब ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, और या मृत्यु हो जाए मेरी, फिर परमानेंट मर गया, फिर तो कभी उस काम को ठीक करने आ ही नहीं सकता जिसकी चिंता में सत्संग में नहीं आया। और यदि आप एक दो दिन के लिए जीवित मर के आ जाओ, न सोच लो मर गए वाय अंत, अब कुछ भी हो पाचे थे, तो दो दिन के दो दिन मरे फिर वापस चले जाओगे, तो फिर तो थोड़ा बहुत बिगड़ा। वैसे तो जो सत्संग में आते हैं उनका काम बिगड़ा नहीं करते, समरिया कर, ये सत्कर्म मान लेना, ये 100% समझना। जिस दिन आपके हृदय में यह बात समझ जाएगी, आपके काम नहीं बिगड़ सकते, आपके समरे पाओगे, चाहे मालिक ने खुद जाके करना पड़ी हो, ये नियम है ईश्वर का, परमेश्वर का। तो फिर भी आपके दिल डटने के लिए परमात्मा कहे, वो जीवित मर का जो दो दिन के लिए, दो दिन पाछे फिर से मान लोगे जब परमानेंट मर गए, फिर भी तो न्यू का न्यू बिगड़ा रहेगा। तो कहते असंग जन्म तो न मर, फिर जीवित मरना है कि जैसे बीड़ी शराब मांस तम्बाकू है, कार कोठी देख कर कार कोठी बुढ़ान न दिल करे ना, इन 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 ते भी मर ले, इन बुराइयों को भी नहीं छुआ है, टच नहीं करे, मर गया मरिया के खावे फिर के चावे, ऐसे सोच ले। तो फिर बताते हैं द्वादश मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। अभी तक हमें क्या बताया गया था, दसवां द्वार, दसवां द्वार में पार हो जा, दसवां द्वार पार करके, नहीं ये 12 द्वार है, 12वां द्वार है सतलोक में खुलता है। दसवां द्वार है वो केवल एक ब्रह्मांड में ही रह जाता है, एक ब्रह्मांड से पार होकर शून्य में घूमता रहता है, और जो दसवां 11वां द्वार है वो 21वें ब्रह्मांड काल के 21वें ब्रह्मांड से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 11वां द्वार है, और 21 सात संख ब्रह्मांड जो परब्रह्म के हैं उनसे आगे चल के जो सतलोक में प्रवेश करने का एक ही द्वार है वो 12वां द्वार है, वो द्वादश दर, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके हम उस 27 स्थान पर अमर लोक में जावांगे। द्वादश मध मैल मठ बोरे बोहर न दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया।